ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण तो माता जी किसी का किसका ध्यान हुआ था योर मदर इस दुनिया को जिसमें हम जी रहे हैं उसका नाम है मृत्यु लोक और इसको जीवन लोक नहीं कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है अनिश्चित बहुत सारी धन अनिश्चित है हमारी सेहत भी अनिश्चित है हमारी सुंदरता भी अनिश्चित है हमारी स्मरण शक्ति गारंटी नहीं उसकी और हमारा सुंदरता हमारा रूप हमारी बुद्धि हमारा ज्ञान सब अनिश्चित है कुछ देर के लिए है कुछ देर के लिए नहीं है और हमारा धन वो भी हमें कुछ दिन साथ देता है कुछ दिन छोड़ देता है लेकिन एक वस्तु बहुत निश्चित है वो है मृत्यु वो अपने को छोड़ती नहीं कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो रास्ते का भिखारी हो चाहे वो सुंदर हो चाहे वो गरीब हो बहुत पढ़ा लिखा हो MD PhD डबल PhD साइंटिस्ट डॉक्टर और अच्छे कुल से हो ब्राह्मण हो शूद्र हो किसी भी स्तर पे व्यक्ति अगर दुनिया में है किसी भी स्तर पे कोई भी है हालांकि कोई व्यक्ति नहीं कोई भी जीव कोई भी जानवर पंछी किसी भी स्थिति में हो चाहे कुत्ता प्रधानमंत्री के घर का कुत्ता हो या अंबानी के घर का कुत्ता हो या रास्ते पर घूमने वाला कुत्ता हो कोई भी जानवर हो किसी भी स्थिति में हो उसके लिए मृत्यु निश्चित है इसलिए कहते हैं एज श्योर एज डेथ इतना निश्चित जितना मृत्यु जितना इसलिए निश्चित अगर कोई वस्तु को बोलना है कोई तुलना करनी है तो उसकी मृत्यु के साथ तुलना की जाती है इतना मृत्यु निश्चित है और इतना निश्चित होने पर भी हर एक व्यक्ति इस दुनिया में किसके बारे में सोचता है जो वस्तु निश्चित नहीं है उसके बारे में उसका चिंतन मनन कार्य गति सब उसमें चलती रहती है जो भी व्यक्ति आप देखिए हमारा दिन का अधिकतर समय जो इसमें बीतता है उन चीज़ों को करने में उन चीज़ों को के बारे में सोचने में जो चीज़ें अनिश्चित हैं और जो चीज़ निश्चित है उसके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं और सोचते हैं तो किसी के 13वें दिन पे सोचते हैं किसी की मृत्यु हो गई उसको अगर पहुंचाने गए या उसका 13वां दिन आया तो कुछ देर सोचते हैं फिर वापस चले जाते हैं मराठी में एक हमारी कविता थी उसका नाम था जन्म पड़ भर मणतिल हाय हाय अगर मैं मरूंगा तो कुछ देर के लोग हाय हाय करेंगे फिर अपने काम पर लग जाएंगे फिर कोई मरेगा तो फिर हाय हाय करेंगे फिर अपने काम पर लग जाएंगे इसलिए युधिष्ठिर महाराज ने यही प्रश्न पूछा था ये सबसे बड़ी दुनिया में आश्चर्य की बात क्या है सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कहते सबसे बड़ा आश्चर्य ये नहीं है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाया सबसे बड़ा आश्चर्य ये नहीं है कि एक कोई टावर है वर्ल्ड में तो ऐसा वो टेढ़ा हुआ ऐसा खड़ा है सबसे मनोरम हिस्सा सबसे बड़ा आश्चर्य ये नहीं है कि नायगारा फॉल्स इतने भयंकर हैं सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सब लोग मर रहे हैं लेकिन जो जीवित है उनको लगता है कि वो नहीं मरेंगे इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है इतने लोग मर रहे हैं जो लोग पहुंचाने जाते हैं वो कोई सोचते नहीं कि मैं भी मरूंगा वो अपनी प्लानिंग चलते रहता है उसका आगे क्या करना है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब हम आते हैं, कृष्ण भावना में जब आते हैं, भक्ति में आते हैं, तो हमारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है कि वो है, ये है कि सत्य जो है उसको कभी भी नहीं भूलना, हमेशा याद रखना कि सत्य क्या है। कितना भी हम ऐठते होंगे, गर्व करते होंगे हमारे धन के ऊपर, पोजीशन के ऊपर, पावर के ऊपर, सुंदरता के ऊपर, हमारे अच्छे अच्छे गुणे के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम अच्छा बोल सकते हैं, गा सकते हैं, नाच कर सकते हैं, और हमारे इतना पावर है, हम इतना स्पीच दे सकते हैं, ये सब सब टेम्पररी है, क्योंकि ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। अगर कोई सर्जन है और वो इतना बड़ा कुशल सर्जन है कि उसकी सारी शक्ति उसकी उंगलियों में है, उसकी उंगलियां करोड़ों अरबों रुपए कमा सकती है, क्योंकि उसकी उंगलियों में से सब काम होता है, फाइन काम होता है। एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, अगर उसकी उंगलियां दरवाजे के बीच में घुस गई जो, तो सारा खेल ख़त्म है ना। उसी तरह से सब कुछ अनिश्चित है, और कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम सोचते हैं हमेशा कि जो निश्चित है उस पर हम गौर करते हैं, उस पर हम विचार करते हैं। और हॉस्पिटल की स्थिति में ये गौर करना आसान है, क्योंकि हॉस्पिटल में बार बार मृत्यु होती रहती है किसी न किसी की, कम से कम बीमार तो लोग पढ़ने को आते हैं, इधर बीमार पढ़ के आते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है सत्य के बारे में सोचना। इसलिए हमको आँखें और कान खोल कर चलना चाहिए कि ये दिन हमारे जीवन में निश्चित आने वाला है, और उसके लिए जब हम जीवित हैं तो हमें तैयारी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लास्ट मोमेंट पे जब हम उस घटना को, अपने आप को उसके सामने पाएंगे तो फिर कुछ सोचेंगे क्या करें उसके लिए। अरे दुनिया की कोई एग्ज़ाम होती है ना, CET होती है, MBBS होती है, IIT होती है, BTEC होती है, तो कितना साल पढ़ाई करते हैं उसके लिए, कितना सोचते हैं उसके बारे में, कौन सा प्रश्न आएगा, कौन सा पूछ सकते हैं, कौन सा नहीं पूछ सकते हैं, कौन सा शॉर्ट नोट में आएगा, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ओरल में क्या पूछ सकते हैं, कितना तैयारी करते हैं। अगर एक सवाल पूछने वाले होंगे तो हम लोग 50 सवाल की तैयारी करते हैं, ताकि वो उसमें से कोई भी आएगा तो वो आंसर दे सकते हैं, इतनी हम लोग प्लानिंग करते हैं सोच सोच के तब जाके एग्ज़ाम पास हो सकते हैं। और ये इतनी भयंकर परीक्षा जब हमारी होगी, जो हमें इस शरीर से निकाल कर कहीं और भेज देगी, उसके हम लोग तैयारी नहीं करते। और कृष्ण भावना ये जो आंदोलन है, ये जो भक्ति का आंदोलन है, ये हमको ये सिखाता है कि जीवन भर में कैसी तैयारी करनी है, और जीवन भर में जो तैयारी करेगा वो ही कभी भी इस परीक्षा को देने के लिए तैयार रहेगा। देवल प्रभु आपके लिए हिंदी में प्रवचन किया जा रहे हैं, सब लोग इंग्लिश सुनने को तैयार हैं, याद रखना। तो जीवन भर जो इसकी तैयारी करते रहता है वही किसी समय, किसी भी समय मृत्यु का सामना करने को तैयार होता है। संत गाड़गा बाबा के पास एक भक्त आया और बोला, महाराज जी हम लोग इतनी दुनिया में, हमारे पास पैसा है, घर है, परिवार है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे रिलेटिव्स है, ये है, फिर भी हम लोग को चिंता छोड़ती नहीं है, और आपने के पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप हमेशा निश्चिंत रहते, क्या राज क्या है इसका। तो गाड़गा बाबा बोलते हैं उसको, अरे तू मुझे ये प्रश्न कर रहा है, तुझे पता है क्या तू 7 दिन के बाद मरने वाला है, तो ये प्रश्न क्यों कर रहा है, 7 दिन के बाद तू मरने वाला है। तो एकदम प्रश्न भूल गया वो, क्या किस लिए क्या पूछने आया था, एकदम टेंशन में आ गया। बोला क्या होगा अभी मेरा, बोले जा 7 दिन के बाद लौट के मेरे पास आ, तब मैं आपको बताऊंगा। तो वो इतना विरक्त हो गया मन से कि अभी तो मरने वाला हूँ, अभी क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है अभी। सबके पास गया, गले मिला सबको, जिसका अपराध किया था उसको सॉरी बोला, जिसका थैंक यू बोलना था उसको जाके थैंक यू बोल के आया, जिसको प्रेम से कुछ करना था गले मिल के आया, हृदय की बात बोल के आया, एकदम ऐसा जैसे सब कुछ छूट गया, कैसे आदमी व्यवहार होता है, एकदम विरक्त होकर सबसे मिल के 7 दिन के बाद में लौट के आया गाड़गे बाबा के पास, और बोला महाराज मैं भी एकदम तैयार होकर आया हूँ जाने के लिए। तो महाराज जी पूछते हैं, अभी कैसा लगता है आपको, तो एकदम हल्का हल्का लगता है, एकदम मन हल्का है, कोई चिंता नहीं है, एकदम किसी से आसक्ति नहीं है, किसी से वासना नहीं है, कोई चीज़ चाहिए ऐसा नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही इसका दुख नहीं है, ऐसा मन एकदम हल्का है, मतलब यही हमारे निश्चिंत होने का राज है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है जो आपने मुझे पूछा था कि हम लोग निश्चिंत क्यों रहते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी समय मरने के लिए तैयार रहते हैं। हम जीते ही ऐसे हैं कि कभी भी जाने को तैयार। तो कोई चीज़ का आसक्ति, कोई अपना, कोई पराया, कोई द्वेष, कोई राग, कोई प्रेम, कोई द्वेष करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जो हमेशा तैयार रहता है, और हमेशा तैयार आदमी केवल तैयार है ऐसा बोलने से तैयार नहीं होता है। वो अगर वो कृष्ण से संबंधित है तो भी वो तैयार रह सकता है। खाली बोलने से क्या होता है, हाँ मैं तैयार हो गया, मैं मरने को तैयार, ऐसा बोलने से कोई तैयार नहीं होता है। जब घटना आती है मरने की तो सब लोग चिल्लाते हैं, रोते हैं, और वो नहीं 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 बोलते हैं। ऐसा बोलने से नहीं तैयारी होती है। तैयारी तब होती है जब मन में कृष्ण होता है। जो मन हमारा दुनिया के सारे वस्तुओं में बटा हुआ है, जिसके बारे में हम लोग विचार करते रहते हैं हमेशा, जिसके बारे में हमारा चिंतन चलते रहता है, उन चीज़ों में से अपना मन निकालकर जब हम भगवान पे लगाएंगे तो वह व्यक्ति तैयारी कर सकता है इस बात की। जब मन कहीं लगा हुआ है और मृत्यु सामने आती है तो मन डर जाता है, लेकिन मन कहीं बटा हुआ नहीं है, मन हमेशा कृष्ण के चरणों में है तो मृत्यु आने से वो डरता नहीं है, क्योंकि भगवान के चरणों का ध्यान, भगवान के सेवा में संलग्न होकर रहना, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा निर्भय होने का उपाय है। जैसे वैक्सीन है, वो अगर आपको भय से मुक्त होने का टीका लगाना है तो वही है भगवान की सेवा। तो भगवान की सेवा में लगा रहता है, भगवान के चिंतन में लगा रहता है, वही हर प्रकार के और मृत्यु के भी भय से मुक्त रह सकता है। इसलिए इस जीवन में अगर जीना है तो एक दिन क्या होने वाला है उस पर ध्यान रख के जीना चाहिए। इस दुनिया में मशगूल होकर जीना नहीं चाहिए, वो मूर्खता है। अगर भगवान के भावना के बिना अगर हम अपने दिन बिताते हैं तो सबसे बड़ा भूल भुलैया, सबसे बड़ा भ्रम है वो। और वो भ्रम ऐसा होता है ना, भ्रम के जीवन में कोई भी घटना शौक की तरह आती है, इसको हम सहन नहीं कर सकते। जो भ्रम में होता है उसको हर एक घटना शौक की तरह लगती है। लेकिन अगर समझो कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें 10-15 लोग, 8 लोग, 20 लोग, 25 लोग मर गए, तो बड़ा दुख करते, अरे ऐसे कैसे हुआ, ये कैसे हो सकता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग मृत्यु के लोक में जी रहे हैं, इसमें केवल मृत्यु होता है। अगर मृत्यु के लोक में जाएंगे और मृत्यु देखेंगे तो आश्चर्य करने की बात क्या है। होटल में जाके अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप आश्चर्य करेंगे, अरे ये खाने को खा रहे हैं आप, अरे होटल है, खाने की जगह है तो खाना ही खाएंगे ना, हम क्या करेंगे। तो मृत्यु की जगह जाएंगे तो क्या देखेंगे, मृत्यु देखेंगे। जेल में जाके देखें क्या देखेंगे, जेलर ही देखेंगे, वो कैदी को देखेंगे, जो पापी लोग हैं, वो जो गुनहगार लोग हैं उनको देखेंगे। अरे जेल में कोई संत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम लोग। संत लोग मिलेंगे जंगल में, आश्रम में, तो पापी लोग मिलेंगे जेल में। तो जेल में आने के बाद में पापी लोग दिख रहे थे आश्चर्य करते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। उसी तरह से इस दुनिया में रहते हुए अगर मृत्यु दिखाई पड़ रहा है तो आश्चर्य करने की बात क्या है, मृत्यु लोक में बैठे हुए हैं। इससे निकलने का जो उपाय करता है वो बुद्धिमान व्यक्ति है। ये जानते हुए कि मुझे भी निकलना है, और बाकी दुनिया की बहुत सारी कसौटियाँ, बहुत सारे कष्ट प्रसंग जो है वो हम दूसरों को साथ में लेके कर सकते हैं, लेकिन ये कसौटी जो है ना वो अकेले को देनी पड़ती है। ये स्थिति को किसी का हाथ पकड़ के तुम भी साथ में आना, अंकल आप भी मेरे मैथ्स के पेपर में लिखने को आना, बड़े भैया तुम भी मैथ्स के लिए साथ में बैठना और मेरे को बोलना कैसे वो सॉल्व करना है, कोई नहीं कर सकता है। ये एग्ज़ाम के अंदर आपको अकेले ही सामना करना है, और वो एग्ज़ाम गरीबों के लिए आसान, मेरे के लिए मुश्किल, और बुद्धिमान लोगों के लिए कठिन, और जो कम पढ़े वाले लिखे लोग हैं उनके लिए आसान, ऐसे नहीं होता है। ये एग्ज़ाम सब के लिए सेम आती है, लेकिन इसमें अच्छे गुण से पास कौन होते हैं, जो जीवन की शुरुआत से ही भगवान के सेवा में लगे हुए हैं, इस परीक्षा में अच्छे गुण से पास होते हैं, भगवान के धाम में चले जाते हैं। इसलिए हमें जब हम अपना जीवन जीते ना, तो हर क्षण में जो कुछ कर रहे हैं भगवान की सेवा में उसको दिल से करते हुए जीना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम लोग अपना जब कर रहे हैं तो क्या है यार, भूख लग रही है अभी, क्या कभी पता नहीं 16 माला हो जाए इनको नाश्ता मिलेगा। 16 माला क्यों करना है, अभी 1 घंटा हो गया, अभी तक 16 माला, 4 ही माला हो गई है। अब बोलेंगे बाद में अभी एकादशी का उपवास है, पता नहीं कब खत्म होगा उपवास। हाँ, कथा सुनने बैठे पता नहीं कब कथा खत्म होगी, कब प्रसाद मिलेगा। या मंदिर, अभी संडे को मंदिर को जाना है, अभी थोड़ा सोने का दिल कर रहा है। मतलब अगर हम भगवान की भक्ति में करने वाली जो कार्य हैं वो ऐसे भाव में करेंगे ना ये बूढ़ों के अंदर, तो माया हमको ऐसा पकड़ के रखेगी ना कि हम निकल नहीं सकते उसके हाथ से। अगर भजन भगवान का करना ही है और वो ही हमारे जीवन का एक ही उपाय है मुक्त होने का, तो वो भजन में करने वाले जितने भी कार्य हैं, ऐसा नहीं केवल हरे कृष्णा बोलना ही भजन है, भगवान की सेवा भी भजन है, भगवान के लिए कार्य करना भी भजन है, जो चीज़ भगवान से जोड़ता है वो भजन है। अगर वो भजन अगर हम दिल से नहीं करेंगे तो सब कुछ बेकार है। संत लोग में हमारे अंदर क्या है, संत भी जप करते हैं, हमारे गुरुदेव भी हरे कृष्ण मंत्र ही जप करते हैं, वो भी सोलह माला ही करते हैं, हम भी सोलह माला करते हैं, वही मंत्र जपते हैं। अंतर क्या है, वो जब करते हैं तो अपने आप को 100% उसमें अर्पण करके करते हैं, किसी से मिलते हैं और किसी से बात करते हैं भगवान के बारे में तो केवल उसके साथ रहते हैं और किसी का विचार नहीं करते हैं, वो वर्तमान में जीते हैं, दे लिव इन प्रेजेंट। अभी जब जो कर रहे हैं काम वो हृदय से करते हैं। अगर प्रसाद ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वड़ा पाव है, पाव भाजी है, गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, नहीं, बोले भगवान ने स्वादिष्ट स्वाद चखा हुआ व्यंजन है, भगवान ने इसको स्वाद चखा हुआ है इसलिए मैं खा रहा हूँ, इस ध्यान को रखते हुए खाएंगे। अभी हम प्रसाद लेंगे तो हमको सोचना चाहिए कि ये सब भगवान ने अर्पण करके उसको स्वाद लिया है इसलिए उसको हम आस्वादन कर रहे हैं, उसको ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ तक हमको उस भगवान के बारे में सोच कर चलना चाहिए। उसी तरह जब कर रहे हैं तो भगवान का नाम हम जब कर रहे हैं, उनको पुकार रहे हैं, और आरती में खड़े तो पूरी तरह से सर हृदय सब मन को लेकर बुद्धि को लेकर आरती में खड़ा रहना चाहिए, और कथा में बैठे तो पूरे हृदय को अपने कान में एकत्र करके कथा सुननी चाहिए। दर्शन कर रहे हैं भगवान का तो आंखों में पूरी आत्मा को लेकर भगवान को ग्रहण करना चाहिए, मतलब हृदय पूर्वक मन पूर्वक सब कार्य करना चाहिए। और अगर नौकरी भी कर रहे हैं हम लोग तो मन से करनी चाहिए, आलस से नहीं करनी चाहिए, अरे क्या अभी कॉल आया 10 बजे भी क्या है, सोने का दिल कर रहा है, मन से कार्य करना चाहिए। नाइट ड्यूटी में अगर आते हैं हम लोग तो नाइट ड्यूटी मन से करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अभी सोने को कैसा मिलेगा वो चांद देखने के लिए नाइट में आते हैं, ऐसा नहीं, अरे क्या पेशेंट आ गया अभी क्यों आया तुम, सुबह क्यों नहीं आते हो, ताकि हमको थोड़ा सोने को मिलेगा, अभी नाइट हल्का जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, झाड़ू भी लगा रहा है आदमी तो उसको मन से लगाना चाहिए। इस तरह जब हम जिएंगे ऐसे वर्तमान कार्य हृदय से करेंगे तभी तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये करते हुए वो सोच रहे हैं, वो करते हुए ये सोच रहे हैं, तो दोनों तरफ आप एम्प्टी हैं, हाँ दोनों तरफ रिक्त है हमारा स्थान, कुछ नहीं प्राप्ति हमारी। इसलिए भूतकाल भी है, भविष्यकाल भी है और वर्तमान है, इसमें से हमको केवल वर्तमान में जीना चाहिए। जो भूतकाल में हुआ है उसके बारे में सोच के कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है, उसका उपदेश हम सीख सकते हैं, और भविष्य में क्या होने वाला है ये हमारे हाथ में नहीं है। तो वर्तमान आज का घड़ी जो है अभी 12:13:26 हो गए हैं, ये आपके हाथ में है, इस समय क्या करना है इस घड़ी में वो आपके हाथ में है। माया के बारे में सोचना है, भोग के बारे में सोचना है कि भगवान के विषय में सोचना है, ये आपके हाथ में है। और वो चॉइस जो हम भगवान के विषय में सोचने के लिए अपनाते हैं, वो चॉइस का जो हमारे पास चॉइस है वो हम लोग लेते हैं कि ओके हम भगवान के बारे में सोचेंगे, तो वो व्यक्ति के सामने मृत्यु आने पर उसे कोई भय नहीं होता है, क्योंकि जो सदैव भगवान के बारे में सोचते हैं उनको मृत्यु के बारे में अलग से भगवान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो सदैव भगवान के चिंतन में रहते हैं। तो भगवान बोलते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मेरे शरीर को छोड़ते हुए मुझे याद करेगा वो मेरे पास में आएगा। तो हम लोग अंतकाल में कैसे भगवान के बारे में सोचेंगे, इसके बारे में विचार करते रहते हैं, इससे अच्छा मैं अगर आज भगवान के बारे में विचार कर रहा हूँ और वो करते ही रहूँगा तो अंत में भी करते रहूँगा ना, अलग से अंत में करने की जरूरत नहीं होगी ना। अगर मैं गा रहा हूँ, समझो अभी गाना शुरू कर दिया और शाम तक गा रहा हूँ, शाम को 5 बजे मृत्यु होने वाली है तो सुबह से गा रहा हूँ शाम को भी गा रहा था, अलग से गाने की प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। उस तरह से भगवान की याद करनी है तो अगर रोज याद करेंगे, हर घड़ी याद करेंगे तो मृत्यु की घड़ी में अपने आप ही याद होगी ना, वो इतनी आदत बनेगी आपकी याद करने की, उस समय भी उसकी याद आएगी। लेकिन जीवन भर विषय का चिंतन किया, विषय के बारे में विचार किया, विषय भोग करने का प्रयास किया तो अंत में विषय भोग ही याद आएगा, जिसका प्रैक्टिस हो गया है ना वही आ जाएगा आपको, इसलिए अभी प्रैक्टिस करना चाहिए। अभी प्रैक्टिस क्या है, माया के बारे में चिंतन करने की, भोग के बारे में चिंतन करने की, वो प्रैक्टिस भगवान के बारे में चिंतन करने की अभी करेंगे ना तभी उधर याद आएगी। हम लोग पुणे जाते हैं ना तो पुणे के रास्ते में लोनावला के देहू के तरफ एक रास्ता है, उधर मिलिट्री का छावनी है, उधर लिखा है इतना सुंदर वाक्य लिखा है, उधर लिखा है इफ यू स्वेट इन पीस यू विल ब्लीड लेस इन वॉर। मतलब अगर जब युद्ध नहीं हो रहा है, वो मिलिट्री का एरिया है ना तो युद्ध के बारे में लिखा है, जब युद्ध नहीं हो रहा है तभी अगर आप प्रैक्टिस करके पसीना भाओगे तो युद्ध में कम खून भाओगे। समझ में आपको आया, अगर अच्छे प्रैक्टिस अभी कर रहे हो पसीना आएगा बहुत आपको, तो आपको युद्ध में ज़्यादा जख्म नहीं होंगे, बहुत कम खून निकलेगा। अगर शांति के समय पर जब युद्ध नहीं हो रहा है तो आराम करोगे तो युद्ध के अंदर बहुत खून बहेगा आपका, तब तक कोई अभ्यास नहीं ना उसका, सब जगह गोली लगेगी आपको मर जाएंगे। उसी तरह से जब मृत्यु का समय नहीं है तब अगर मृत्यु की तैयारी में आप लगे रहोगे तो मृत्यु के समय पर दुख नहीं होगा, आनंद होगा, और आज मजा करते रहेंगे तो मृत्यु के समय पर बहुत दुख होगा आपको भी और दूसरों को भी। इसलिए हमको जब जीवन काल चल रहा है तो इस मृत्यु लोक में रहते हुए भगवान के बारे में चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस ना हो। आज मृत्यु की घड़ी आपके सामने नहीं है, आज प्रैक्टिस करो, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो मृत्यु के समय में कोई चिंतन की चिंता की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं, अपने आप उसका स्मरण होगा। जिसका रोज स्मरण कर रहे हैं उसका उस समय भी स्मरण होगा, अपने आप होगा, स्वतः होगा, उत्स्फूर्त होगा, आसानी से होगा। तो वो प्रैक्टिस करने के लिए हम सब लोगों को मनुष्य का शरीर दिया है, बहुत कम जीव को दिया है वो, बहुत सारे जीवों को, पक्षी, प्राणी, मछली, पेड़, ऐसा अलग 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 शरीर दिया है, कुछ कुछ लोगों को ही मनुष्य का शरीर दिया है। और उसका उद्देश्य क्या है कि अभी इस शरीर में वो प्रैक्टिस करने का चांस है, इसलिए प्रैक्टिस करो। कुत्ते बिल्ली के शरीर में वो चांस नहीं होता है, कुत्ता बिल्ली कितना भी कूदेगा तो भगवान के बारे में सोचने का फैसिलिटी उसके शरीर में नहीं है, हमारे शरीर में है। कितना भी गरीब रहेगा ना, कितना भी बुद्धू रहेगा तो भी वो भगवान को याद करने की प्रैक्टिस कर सकता है, ये फैसिलिटी ज़रूर हमको दिया है। भले बहुत बड़ा धन नहीं दिया होगा आपको, एसी में रहने का इंतजाम नहीं किया होगा आपके लिए, लेकिन भगवान को याद करने का फैसिलिटी हम सबको भगवान ने दिया है। कोई नहीं बोल सकता कि हमारे पास नहीं है फैसिलिटी, हम नहीं करना चाहते ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते ऐसा नहीं बोल सकते, हर व्यक्ति कर सकता है। और वो फैसिलिटी जो है वो जो पूरी तरह इस्तेमाल करेगा वही इस जीवन में यशस्वी व्यक्ति है, सक्सेसफुल वही व्यक्ति है जो इस जीवन में और जीवन के अंत में उनको याद कर सकेगा, वही सक्सेसफुल व्यक्ति है। फिर हमारे सुंदर होने से और खराब दिखने से और बहुत बुद्धिमान होने से धनवान होने से कोई मतलब नहीं है, सारा पहाड़ जैसा धन जो है ना वो जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, वो सब कुछ हमको यही छोड़ के जाना है। जब किसी धनवान, सबसे दुनिया में धनवान व्यक्ति होगा, उसके पास में अरबों और खरबों रुपए होंगे, और आज वो उसको लेकर इतरा रहा है, जा रहा है, घूम रहा है इधर उधर बड़े गर्व से, उसको वो एक एक रुपया, एक एक पाई, एक एक डॉलर यही छोड़ के जाना है, नंगे हाथ और नंगे पैर और खुले हाथ कुछ नहीं लेके जा सकता। मृत्यु के समय पर आदमी किसी वस्तु पर गर्व नहीं कर सकता है क्योंकि कोई वस्तु उस पर होती नहीं है उस समय। एक घटना जो है वो मृत्यु, वो घटना मृत्यु की ऐसी होती है जो गर्व से रहित होती है, क्योंकि उस समय अपना कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ जो अपना समझते हैं उसको छोड़ के जाना होता है, तो क्या गर्व करेंगे हम। लेकिन उसका गर्व रहित जीवन का अनुभव अभी करेंगे धन दौलत होते हुए, तो उस समय आसानी से हम गर्वहीन हो सकते हैं। तो उस समय हमारी वस्तुओं को छोड़ के जाते समय बहुत दुख होगा, अरे मेरा धन अभी मैं कैसे उसको इस्तेमाल करूँगा, मेरा क्या होगा, प्रॉपर्टी से छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन पहले से अगर आपको पता है कि ये हमारा नाम पे है लेकिन हमारा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये सब छोड़ के जाना है, तो इतना दुख नहीं होगा। अभी सब मेरा 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 करते रहेंगे तो उसको छोड़ते समय बहुत दुख होगा, और अगर जानते हैं हम कि कुछ मेरा नहीं है तो कुछ ज़्यादा दुख नहीं होगा। और एक मैंने अभी बहुत पहले बहुत कम दिन पहले एक सुना था मैंने, तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, और तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, ऐसे भगवान बोलते हैं। अगर तू अपने काम में लगा हुआ है तो मैं भी अपने धाम में लगाऊं, लेकिन तू मेरे नाम में लगा हुआ है तो तेरे हर काम में मैं लगाऊं, तेरे हर हित में अहित में दुख में सुख में सब चीज में मैं लगाऊं। तो अगर भगवान में भगवान को अगर अपना बनाना है तो केवल उसका नाम लेना है बस। तो हमारा जो भी इष्ट है, जो भी हमारे लिए इच्छित है, जो भी हमारा कल्याण है, वो सब भगवान करते रहेंगे अपने आप। इसलिए वो कहते हैं कि तू तेरे काम में तो मैं मेरे धाम में, लेकिन तू मेरे नाम में तो तेरे हर काम में मैं हूँ। तो इसलिए हमें अपने जीवन का हर समय हर घड़ी, चाहे हम कुछ भी करते होंगे, नौकरी करते होंगे, धंधा करते होंगे, परिवार को देखते होंगे, सोते होंगे, उठते होंगे, स्नान करते होंगे, उनको याद करना चाहिए। और वो फ्री है, उसकी कोई फीस नहीं है, हाँ कोई चार्ज नहीं है उसका, और फ्री में उनको याद कर सकते हो। उनकी याद करने से बड़े भय से आप मुक्त हो सकते हो, और सबसे बड़ा भय अनेक भयों के आगे वो मृत्यु का है, उसमें आप निश्चिंत रहोगे। जैसे गाड़गे बाबा बोलते हैं ना कि हर समय मरने को तैयार रहते हैं, रेडी रहते हैं, एनी टाइम अगर आ गया, नाम का अभ्यास हो ही रहा है, उस समय भी नाम को याद करेंगे और चले जाएंगे, बड़ी इज्जत से, बड़े क्या शान से, बड़े गर्व से, और बड़े क्या कहते हैं आनंद से जाएंगे। चिंता नहीं करेंगे, दर्द नहीं करेंगे, दुख नहीं करेंगे, सर नहीं पटकेंगे कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मुझे क्यों ले जा रहे हैं, अभी क्यों ले जा रहे हैं, बाद में क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं, कुछ नहीं, रेडी रहेंगे। क्योंकि वो समय जो मृत्यु का होता है वो संतों के लिए बड़ा शुभ घड़ी होती है। जो दुनिया भर के लिए अशुभ है, अपवित्र है, रोने जैसा है, हाँ सर पीटने जैसा घटना होती है, भयंकर घटना मृत्यु की होती है, वो संत के लिए एक प्रेम की घटना होती है। क्यों? क्योंकि उस समय उसके प्रिय भगवान उसको मिलते हैं, इसलिए मृत्यु की घड़ी का इंतजार करते हैं कब मिलेंगे। तो किसी की शादी हो रही है, किसी की कल शादी हो रही है हमारे परिवार में, तो कैसा वेट कर रहे हो, अभी 13 घंटा बाकी है, अभी 12 घंटा बाकी है, अभी 6 घंटा बाकी है, अभी केवल एक रात बाकी है, अभी 2 ही घंटे बाकी है, अभी 1 ही घंटा बाकी है, 15 मिनट में मुहूर्त आ जाएगा। क्यों ऐसा याद करते हैं? क्योंकि उसके बाद मेरे साथ मेरे पति का मिलन होगा, पति बोलते मेरे पत्नी का मिलन होगा, उस मिलन की आस में उस घड़ी का इंतजार करते रहते हैं। उसी तरह भगवान के लिए भक्त याद करते रहता है कितने दिन बचे अभी जीवन के, कितने दिन बचे, क्योंकि उस दिन जब मृत्यु आएगा तब भगवान से मेरी मुलाकात होगी, मेरे सबसे प्रिय व्यक्ति जो है उससे मैं मिलूंगा, उसके साथ मेरा जीवन आरंभ हो जाएगा। मृत्यु लोक से मुक्त होकर मैं जीवन लोक में जाऊंगा, हाँ जब भगवान के साथ रहूंगा। तो दर्द से वो पीड़ित नहीं होते, उस समय वेट करते रहते हैं। तो एक व्यक्ति वेट कर रहा है, एक व्यक्ति रहे नहीं, कब कैसे मृत्यु से भागूं मैं, कहाँ दूर जाऊं मृत्यु से, कैसे मैं मृत्यु को टाल दूं, ये हम सोचते हैं। तो हमको उनमें से बनना चाहिए जो मृत्यु की वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, तड़पते हैं उसके लिए, कब आएगा वो, कब मेरे प्रिय भगवान को मुझे मिलाएगा। ये जीवन उसी के लिए दिया है, उनके लिए दिया है, हमारे लिए नहीं। और जो जीवन उनके लिए समर्पित करता है उनके लिए आनंद ही आनंद इस जीवन में भी है, और जीवन के अंत में जो जीवन शुरू होने वाला है उसमें भी उसको आनंद है। इसलिए हम बरसाना जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, कहाँ उनकी याद करने के लिए, उनके याद करने का अभ्यास करने के लिए, कुछ समय बिताने के लिए उनकी याद में तीव्रता से जाते हैं। यहाँ पर भी रहते हैं, सुबह उठते हैं, जब करते हैं, मंदिर जाते हैं, कुछ भी करते हैं उनको याद करने के लिए, ताकि उनकी याद बनी रहे। उनकी याद बनी रहेगी तो जीवन में कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं हो सकता। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है किसी का? और एक बात बताना मैं भूल गया कि अगर आप अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाए रखते हैं तो मृत्यु अगर अचानक भी आएगा ना आपको, और आपको समझो याद नहीं आती भगवान की, भगवान आपको उनकी याद दिलाएंगे, ये भी समझ लेना। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में जिन्होंने संकीर्तन यज्ञ में भाग लिया हुआ है उनके लिए ये भगवान का वादा है कि अंत समय में वो तुम्हारे हृदय के आंगन में आके नृत्य करेंगे हरिनाम संकीर्तन, और आप उनको याद भी नहीं करेंगे, आप भूल जाएंगे तो भी आपको याद आएगी, क्योंकि आपके हृदय के आंगन में आके कीर्तन करेंगे। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु और उनका पार्षद वर्ण जो है सब आपके लिए आके याद दिलाएंगे। इसलिए अभी आप याद करो और उस समय याद करने की चिंता छोड़ दो। अभी याद करने का प्रयास करेंगे, उस समय याद करने का ठेका वो लेते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट उनका है। इतने हमारे भगवान दयालु हैं, बहुत दयालु। इसलिए उनको याद करो, बाकी चिंता उन पर छोड़ दो। अंतकाल में क्या होगा वो सब आपको, आपका रास्ता एकदम सुधार देंगे। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जो भगवान को हृदय से पुकारता है, मन से सब कुछ भूल कर पुकारता है, उसको भगवान कभी भी नहीं भूलते। अगर हम भी उसको एक बार पुकारने के बाद जीवन भर भूल जाएंगे, तो एक बार पुकारे हुए व्यक्ति को भगवान कभी भी नहीं भूलते। इसलिए उनको पुकारना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।